نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين. ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الودود دیکھا. کچھ آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی اپنے عمل میں اس کے بعد؟ کچھ آپ نے غور کیا؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کا نام الکریم الاکرم. الکریم اللہ کا نام کرم سے ہے, کرم سے, اور اس کے معنی ہے جو بن مانگے عطا کرے. آپ نے مانگا بھی نہ ہو اس کے بغیر ہی دینے والا. یعنی انسان ایک تو ہوتا ہے نا کہ دعائیں مانگ مانگ کے کوئی چیز لے, لیکن الکریم وہ ہے کہ انسان کچھ مانگے ہی نہیں اور اس کے بغیر ہی عطا کرتا چلا جائے. آپ خود سوچیں کتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد. ابھی میں انشاءاللہ اس نام کا آپ کو اور بتا دوں, پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہم نے جو مانگی تک نہیں کبھی. مانگنا کیا, ہم نے سوچ ہی نہیں آئی, ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی نعمت ہے. مانگنا تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کو پتہ ہو. اب میں نے کوئی مانگا کہ مجھے دل ایسا دیا جائے, لنگز ایسے دیے جائیں, کڈنیز ایسا ہو, آنکھیں ایسی ہوں, ناک ایسی ہو, یہ ہمیں کیا پتہ, یہ سیلز ایسے ہوں باڈی میں, یہ ہو, کہاں پتہ ہے. دو چار کتابیں پڑھ لی تو اتنا پتہ چل گیا کہ جسم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ. تو الکریم وہ ہے جو بین مانگے عطا کرے, بہت زیادہ عطا کرنے والا. الاکرم میں یہ چیز آتی ہے جسے ایگزیجوریشن ہو جاتی ہے, جیسے اکبر ہے, احسن ہے, اکرم. الاکرم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے اندر یہ کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی کرم کر ہی نہیں سکتا, سبحان اللہ. اور اس کا معنی کیا ہے, قدرت کے باوجود معاف کر کے کرم کرنے والا. وہ قدرت رکھتا ہے پکڑنے کی, اس کے باوجود وہ کرم کرتا ہے. ہم نے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کرم, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو الکریم اس کے یہ معنی ہے جو بہت سخی ہو, بہت دینے والا ہو, جینرس, بہت زیادہ. تبھی تو بن مانگے ہی دے دیتا ہے نا. تو کیونکہ اس کے بہت سارے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک ایک نام میں سبحان اللہ اتنے معنی ہیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ ہے لیکن کتنی ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی شان ہے. تو اب میں آپ کو سارے جو پانچ چھ اس کے معنی پہلے بتاتی ہوں. الکریم وہ ذات ہے جو بغیر کسی عوض کے اور بغیر سوال کے عطا کرے, بغیر کسی عوض کے, یعنی بغیر کوئی بدلے کی. یعنی اب مجھے آپ کو بدلہ دیں گے, آپ مجھے تھینک یو بولیں گے تو پھر میں آپ کو یہ دوں گی, آپ پھر اس کے بعد میری نمازیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو, نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی بدلہ چاہیے ہی نہیں, بدلے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہم عبادت کرتے ہیں نا, یہ اس کو نہیں ہے ضرورت کہ وہ اس لیے ہمیں دے گا کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہوں گے یا ہم روزہ رکھتے ہوں گے. نہیں, بغیر کسی عوض کے, بغیر سوال کے عطا کرتا ہے. نمبر ون یہ ہوا. نمبر ٹو, الکریم وہ ذات ہے جو اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے, بغیر کسی سبب کے دینے والا ہے. اس کو کوئی بیچ میں سبب نہیں چاہیے کہ اس کے تھرو ہی دے سکتا ہے, اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے. الکریم وہ ذات ہے جس کو عطا کرنے میں اور اچھا معاملہ کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو, وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی تقسیم کرنے والا ہے. سوچیں کہ وہ یعنی عطا کرنے میں اور نرمی کرنے میں, اچھا معاملہ کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے, میرا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم تو بہت دیکھتے ہیں نا, اچھا مسلمان ہے یا نہیں, اس کو دیں کہ نہیں دیں, یہ نیک ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں, سب کو دیتا ہے. یہ اس الکریم کی شان ہے, سب کو دے رہا ہے, سب میں خیر اور بھلائی تقسیم کر رہا ہے. इसलिए कि उसके सिवा हर अता करने वाला कभी ना कभी रुक जाता है या उसके खजाने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अलकरीम के एहसानात, उसकी अता कभी ख़त्म नहीं होती, जारी है, जारी है और जारी है। आप देखते नहीं कोई काफिर हैं ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की बातों का मजाक करते हैं, खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं, खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ बोलते हैं, वो फिर भी उनको खिलाता है, पिलाता है, वो पालता है, सब करता है। तो ये इसलिए कि वो अलकरीम है। अल्लाह अकबर, अलकरीम वो ज़ात है, अगले पॉइंट, जो अपने इनामात और एहसानात बंदों की तरफ से कबूल करने पर खुश होता है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर अलकरीम वो ज़ात है जो नेकी की तौफीक खुद देता है, फिर बंदों की नेकियों पर उनकी तारीफ भी करता है। सुभान अल्लाह। पहला पॉइंट क्या था, जो अपने इनामात को एहसानात को बंदों की तरफ से कबूल करने पे खुश होता है, और यानी जब उनको अता करता है ना, तो वो जो कबूल करके बंदे कबूल करते हैं उस चीज़ को, तो उस पर भी खुश होता है, और जब नेकी तौफीक खुद ही देता है फिर बंदों की नेकियों पे उनकी तारीफ भी करता है। इसकी एग्जांपल पहले मैं आपको बताती हूँ, आपको फिर बात समझ आ जाएगी। जुनेद बगदादी जो थे ना, वो एक दफ़ा कहीं गए तो वहाँ पे किसी ने कुरान करीम की तिलावत कर रहा था कोई, और उन्होंने ये आयत सुनी, सूरह सौद में है ये आयत, इन्ना वजदनाहु साबिरा नियमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये आयत है कुरान में सूरह सौद में, कि हकीकत ये है कि हमने उसको बड़ा सब्र करने वाला पाया, और वो हमारे बेहतरीन बंदे थे, यकीनन वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अच्छा अब देखें, ये जब उन्होंने आयत सुनी ना तो रोने लगे, लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, फरमाया क्या तुम्हें हैरत नहीं होती कि अल्लाह ने अपने फजल से ही अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र अता फरमाया, और जब वो सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनके सब्र को कबूल फरमाता है और उनकी तारीफ फरमाता है कि मेरा बड़ा अच्छा बंदा है, इसने सब्र किया। वो सब्र दिया किसने, वो तो अल्लाह ने खुद ही दिया, फिर उसी को देख के उसी बंदे की तारीफ कर रहा है। यानी कैसा वो रब है, कितना करीम है कि अपनी भी दी हुई चीज जब तुम उसको वापस देते हो, यानी सब्र करके उसको दिखाते हो जबकि उसने तुम्हें सब्र दिया, तो उस पर भी वो तारीफ करता है उसको कबूल करके। और आप देखें जितनी भी हमारे पास चीजें हैं वो अल्लाह की दी हुई है ना, अब हम उनको अल्लाह के रास्ते में जब लगाते हैं तो होता क्या है, अल्लाह ताला तारीफें फरमाता है कि इस बंदे ने ये किया, इसने ये किया, और उसको अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। अब कारनामा उसका क्या हुआ, अल्लाह ने ही दी थी ना वो चीज़, उसने अल्लाह के रास्ते में दे दी तो क्या फ़र्क पड़ गया, चीज़ तो उसी की है। मसलन हमें कोई माल दिया है, उसी ने दिया है ना, अगर हमने कोई स्पेंड भी कर दिया तो कौन सा हमारी अपनी चीज़ थी जिसमें से हमने स्पेंड किया, लेकिन वो खुद देता है, और जब इंसान उसी के रास्ते में देता तो उसकी तारीफ करता है। सुभान अल्लाह, ये है वो अलकरीम रब। तो अलकरीम वो ज़ात है कि उसकी नेमतें हर एक के लिए आम है, चाहे वो ज़रूरतमंद हो या कोई अमीर हो या कोई बादशाह हो, कोई भी हो, हर एक के लिए। एक बुज़ुर्ग के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैंने 5 लाख रुपए में अपना गुर्दा बेच दिया। तो उन्होंने बुज़ुर्ग ने अपने साथियों से कहा, सोचो हम सब के गुर्दे ठीक हैं तो हम सब अपनी कमर पे 10 लाख रुपए के तो सिर्फ गुर्दे ही लेके फिर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला इतनी कीमती चीजें अता फरमाता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। वो ये जो उसने हमें फराइज हमारे पर रखे हैं ना, कि नमाज पढ़ो या तुम ज़कात दो या तुम ये करो, ये कोई बदले के तौर पे नहीं कि देखो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ अब बदले के तौर पे तुम ये करके दिखाओ, इसलिए नहीं है। हम बदला तो इन नेमतों का दे ही नहीं सकते। सोचिए आप एक आँख का ही बदला देने लगे, कितनी नमाजें आपको पढ़नी चाहिए सिर्फ एक आँख की जो बिनाई है उसके ऊपर, उसकी भी कीमत नहीं हम दे सकते। तो ये हमारी जो ऐसी टूटी फूटी सी नमाजें हैं, ये क्या उन नेमतों की कीमत है? नहीं। तो वो देता है बगैर बदले के लालच या बगैर बदले की चाहत के। और फिर अगला पॉइंट, अल करीम वो जात है जो सजा देने पे कुदरत रखते हुए भी माफ कर देता है। अल करीम वो जात है जो अपने किए हुए वादे पूरे करता है। अल करीम वो जात है जिसके सामने हर छोटी बड़ी हाजत पेश की जाती है। आप देखते हैं बादशाहों को भी, जब आप देखते हैं ना हाथ उठाए हुए, वो भी अल्लाह से ही मांग रहे। फकीर है वो भी अल्लाह से ही मांग रहे। छोटी चीज भी, सबको जो भी चाहिए वो भी अल्लाह से मांगनी है, बड़ी भी उसी से मांगनी है। और अल करीम वो जात है जो इसके पास पनाह ले लेता है उसको वो जाया नहीं करता, और जो उसके सामने इल्तजा करता है उसको बे यारो मददगार बे आसरा नहीं छोड़ता। तो हम फिर जब दुआ मांगा करें तो क्या कहा करें? अल्लाह करीम, ऐ रब्बे करीम। इसलिए कि अल करीम में ये बात है कि जो उसके पास पनाह ले ले वो उसको जाया नहीं करता, जो उसके सामने इल्तजाएं करता है दुआएं करता है वो उसको बे यारो मददगार नहीं छोड़ता, बे आसरा नहीं छोड़ता। अल करीम वो जात है जो बिला वजह किसी पे गुस्सा नहीं करता। अल करीम वो जात है जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, किसी को नाइंसाफ़ी में सज़ा नहीं देता। अल करीम वो जात है जो हर नक्स और आफात से पाक है। और अल करीम वो जात है जो मुकरम भी है, यानी इज्जत देने वाला भी है, इज्जत का खजाना उसके पास है, वो खुद भी इज्जत वाला है और इज्जत देता भी है। अल्लाह अकबर। ये है सारे मतलब अल करीम के। वो ऐसा कर्म करने वाला है कि इसके उसके कर्म के आगे किसी मखलूक का रहमो करम कोई भी निस्बत नहीं रखता, उसके मुकाबले में कोई करीम आ नहीं सकता जितना वो करीम है, जितना वो अता करने वाला है, जितना वो इंसान को देकर फिर उसके बाद दोबारा जिताता तक नहीं है, ऐसा कोई और नहीं हो सकता। तो वो तो उसके कर्म का तो हाल ये है कि वो नालायकों पे भी मेहरबानी कर देता है, बगैर सवाल के ही जो अब अता कर रहा है। बंदों को खुद पता भी नहीं होता क्या क्या चीज़ें हमें बिन मांगे मिली हुई हैं, बंदों को नहीं पता होता। वो इंजॉय कर रहे हैं उन नेमतों को, चल रही हैं वो। फिर एक दिन डॉक्टर बताता है जी आपके तो बॉडी में ये हो गया ऐसे। फिर इंसान सोचता है अच्छा ये भी कोई चीज़ थी। और फिर जब लोग ऐसी बात बताते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी भी हमारे अंदर कोई सिस्टम है जो इस तरह से ख़राब हो जाए, कोई कमर में, कोई सर में, कोई दिमाग में। कई लोगों का इस तरह की बात पता चलती है, हम खुद हैरान हो जाते हैं। हमें ये कभी एहसास ही नहीं होता कि वो नेमतें हम कितनी इंजॉय कर रहे होते हैं। किसी के उन्हीं चीज़ों में कोई ख़राबी आए ना, मिसाल के तौर पे किसी से टेस्ट की नेमत छीन ली जाए कि वो टेस्ट कर सकता हो, अब हमें नहीं इसका एहसास होता क्योंकि हम तो रोज़ चीज़ें खाते हैं और मज़ा लेते हैं उनका। लेकिन जब हम किसी का सुनते फिर हैरान होते अच्छा ये भी तो एक नेमत थी कि हम टेस्ट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक चीज़ को दूसरे से, ये मीठी है, नमकीन है, ये खट्टी है, ये ऐसी है, और उससे हम मज़े लेते हैं। फिर अल्लाह ताला टेस्ट की नेमत छीन लेना तो आप दाल खाएं या गोश्त सब एक ही हैं, कुछ फ़र्क नहीं है। क्योंकि जब टेस्ट ही नहीं पता चल रहा तो क्या। ये तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि यानी इंसान करोड़ हा नेमतें ऐसी यूज़ कर रहा है जिसको उसको पता ही नहीं कि ये भी नेमत है। तो अल करीम वो ज़ात है सुबहान अल्लाह जो देता है ना, उसको ये नहीं है डर के हाय मेरे पास तो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम किसी को देने लगते हैं तो हम अच्छा मैं इतने निकालूँ, मेरे ख्याल वहाँ पे पहले भी मैंने मस्जिद में दे दिए, मैं मेरा ख्याल अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा पहले 20 का नोट निकालने लगेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं मेरे ख्याल 10 का ही दे देती हूँ, फिर कहेंगे नहीं अरे वहाँ पे भी तो खर्च करना है ना 5 ही निकाल देती हूँ। हमें डर होता है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, उसको ये नहीं डर है, वो लुटाता है अपने खजाने। अब वो इतनी मेहरबानी करता है कि हमारी तमन्नाओं से भी ज़्यादा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, करीम वो रब है जो कुदरत भी रखता है अजाब देने की मगर माफ करता है, वादे करते करता है तो उनको पूरे करता है, जब देने लगता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के देता है। वो ये नहीं देखता मैं कितना दे रहा हूँ, गिन गिन के दूं इनको। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि जब अल्लाह से मांगो तो बढ़ा के मांगा करो, तिर्मिजी की रिवायत है। यानी जब आप मांग रहे हो तो बेशक हमें तो ऐसे फील होता है ना कि हम क्या छोटा मुंह बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज़ें कैसे मांग लें। हाँ, जन्नतुल फिरदौस मांगते हुए शर्म आती क्योंकि अपने आमाल देखते तो शर्म आती है, कहते हुए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे देना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं ज़्यादा मांगो। क्यों? इसलिए कि ये नहीं देखो कि मैं क्या मांग रही हूँ, वो चीज़ कितनी बड़ी है, ये देखो कि मैं किससे मांग रही हूँ, वो कितना बड़ा है जिससे मैं मांग रही हूँ। वो जहानों का रब है, वो चीप नहीं है देने में, कोई इंसानों की तरह वो नहीं है कि इतनी बड़ी ज्यादा चीज मांग ली, अपनी औकात तो देखो, वो ऐसे नहीं है। वो अल करीम है, तुम्हारा मामला अल करीम से है। सुभान अल्लाह, वो तो खुश होता है दे के, और उसे मांगा जाए तो खुश होता है, सखावत करता है, जेनरस है, वो चाहता है मांगा जाए। बंदे चाहते हैं हमसे कभी ना कोई मांगे, वो चाहता है कि तुम मांगो ऐसे रब से। तो फिर इंसान कैसे दुआएं करके थक सकता है, तो फिर तो मांगो, जो मांगना है मांगो। तो करीम जात अल्लाह की, करम करने वाली जात अल्लाह की, बगैर किसी वसीले के, ये नहीं कहता जाओ फलाने के पास जाके पहले एप्लीकेशन दो फिर वो मेरे तक पहुंचाएगा, जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं जी, पहले हमारे सेक्रेटरी से जाके मिले, वो फिर आपको बताएंगे, फिर वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे, तो फिर जाएंगे कहीं आप बड़े साहब के पास जाएगी आपकी एप्लीकेशन। ऐसे थोड़ी कि आप डायरेक्टली उसको देते रहे, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, वो अल करीम, ऐसे डायरेक्टली उससे बात करो, डायरेक्टली, कोई बीच में वास्तों की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाहु अकबर। और करीम वो ज़ात है जो गुनाहगारों को, अल्लाहु अकबर, ना उम्मीद नहीं करता और उसको परवाह नहीं है माफ करने में, जो वो बावजूद इंसान की नाफरमानी के एहसान आप करता रहता है उसमें, और उन एहसानों में एक सबसे बड़ा एहसान ही है माफ कर देना, इसका सबसे बड़ा करम है कि वो माफ कर देता है। तो इसमें सखावत भी देखें आ गई, और अल करीम में दूसरी चीज़ है इज्जत। हम कहते हैं ना कि उसने मेरी मेरी बड़ी तकरीम की, उसने मेरा बड़ा इकराम किया, यह हम उर्दू में भी बोलते हैं। तो वो इकराम करने का मतलब क्या होता है, तकरीम करने का मतलब क्या होता है, और करमुल्ला वजह भी हम कहते हैं, अल्लाह उनके चेहरे को इज्जत दे, तो वो क्या मतलब होता है, इज्जत, बुजुर्गी। तो अल्लाह ताला वो बड़ी बुजुर्गी वाला है, वो बड़ी इज्जतों वाला है, इज्जतों का मालिक क्या है, खुद भी इज्जत वाला है, और उसने किन किन चीज़ों को इज्जतें दिया, और उसका अर्श भी करीम है, हम कहते हैं ना रब्बुल अर्शिल करीम, करीम अर्श का मालिक। तो करीम अर्श का मतलब क्या है, यानी इज्जत वाला अर्श, और कुरान करीम हम बोलते हैं तो कुरान भी क्या है, इज्जत वाली चीज़ है, और कुरान भी बहुत जेनरस है, बहुत कुछ देता है इंसान को, बहुत सखी है वो भी, क्या क्या देता है, हिदायत भी देता है, इंसान को रास्ता दिखाता है जिंदगी का। ठीक है, तो ये दोनों ही माने इसके अंदर आ जाते हैं, और दोनों ही माने बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने जो ये नाम हमें बताया तो इसीलिए बताया कि हम उससे मांगे तो बहुत कुछ मांगे, हम ये सोच सोच के ना मांगे कि वो अगर इतनी लंबी लिस्ट दूंगी तो फिर कैसे होगा। किसी ने कहा मुझे कि मैं एक ही चीज़ बस मांगती हूँ ताकि वो ही बस कबूल हो जाए, क्योंकि एक मांगूंगी तो उसका ज़्यादा चांस है कबूल होने का। ओहो, तुम समझे ही नहीं अल्लाह को, तुम सोचते हो वो एक दे, एक मांगूंगी तो वो एक देनी शायद उसके लिए आसान है, तो वो फिर एक मेरी पूरी कर देगा। तुम पूरा जहान मांग लो, तुम जितना मर्जी मांगो, तुम्हारा वास्ता किससे है, तुम ये नहीं सोचते, वो आगे से देने वाला कौन है ये नहीं सोचते। सुभान अल्लाह। अगर एक इंसान का हाल ही हो सकता है कि इंसान का, मैं बताती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास एक बद्दू आया, उसने कहा कि मुझे कुछ अता करें। उस वक्त कुछ माल आया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आपने फरमाया तुम ये देख रहे हो, ये एक वैली है दो पहाड़ों के दरमियान, इसके दरमियान इतनी बकरियां थी, इतनी बकरियां थी, भेड़ें, बकरियां, मवेशी, तो ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं। और वो आदमी तो इतना खुश हुआ और वो माल लेके लौटा तो अपने कबीले वालों को जाके कहने लगा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो देते हैं तो उनको फख्र का खौफ नहीं है। ये एक इंसान की सखावत है जो मखलूक है, और जब मालिक देने लगता है तो फिर सोचें उसकी सखावत का आलम, वो उसको परवाह नहीं है, देते वक्त परवाह नहीं है। आप देखें ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत कोई बिलियनेयर के पास आप चले जाएं, बहुत कोई बहुत बड़ा यानी बहुत अमीर तरीन दुनिया का आदमी, वो तो टिप वगैरह में ही, लोगों को सुना है कि 1,000-2,000 तो ऐसे ही डॉलर दे देते हैं टिप में, पता नहीं कितने हज़ारों भी दे देते हैं। बड़ी बड़ी बातें आती हैं मशहूर जी, उन्होंने टिप इतनी दे दी, कौन उसके लिए 1,000 कुछ भी नहीं है। अब वो हमारे जैसों के लिए अच्छा 1,000 दे दिया उसने, उनके लिए कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, उनके लिए तो ये 100-200 कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बिल्कुल मामूली सी रकम है, वो तो हज़ारों में ही बात उनकी शुरू होती है। 2-4 डॉलर या 2-4 रुपए क्या चीज़ है उनके सामने। तो ये यही सोचें, ये अब एक आदमी से मामला करते हैं तो ये बात समझ आती, सोचें जहानों के रब के सामने आप खड़े हुए हैं जब आप दुआ कर रहे हैं, और हमारी क्या दुआएं, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे किसी के से समझ लें आप बहुत अमीर आदमी, उसे कहें कि मुझे एक क्वार्टर दे दे, 25 सेंट्स दे दो, कितनी मामूली चीज़ आप मांग रहे हैं ना। अब ये तो फिर भी चलो एक कंपैरिजन हो सकता है कि भाई हाँ ठीक है वो है और ये एक पैसा, हम सोचें अल्लाह के लिए तो ये इनमें से ले सका मिसली ही शायद, कोई मिसाल उसके लिए हम दे ही नहीं सकते कि ऐसी जो इंसानों की मिसालें, वो तो उसके लिए सूट में, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ। सोचें कि हम उनसे उससे सारा जहान भी मांग लें ना, जैसे अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह उसका करम देखें कि जो लास्ट बंदा जहन्नुम से निकलेगा और लास्ट में वो जन्नत में एंटर होगा, लास्ट में उसको कितनी बड़ी बादशाहत मिलेगी, जितनी पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें, और इसे 10 times more, तो यानी उसको देते हुए कुछ नहीं है परवाह के, वो अच्छा नहीं इसको तो कम देना चाहिए, इसको ऐसा देना चाहिए, ये तो थोड़ा होना चाहिए इसके लिए। ये हम देखते हैं नाप नाप के देते हैं, गिन गिन के देते हैं, वो नहीं ऐसे देता। अल्लाह अकबर। तो अब इस नाम का असर हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि हम अल्लाह ताला की बड़ी शुक्रगुजारी करें कि उसने जो हमें नियमतें दी हुई हैं वो कितना करीम है, और उसने सबको दी हुई है। देखो सुभान अल्लाह, यानी ये कितनी बड़ी बात है, ये उसका कितना बड़ा करम है कि हर एक को अता किया हुआ। ये नहीं वो देख के देता कि जो है मुझे कौन पूज रहा है और कौन नहीं पूज रहा। दूसरी ये बात है जब हम खर्च करने लगे तो हम भी कंजूसी ना करें। तीसरी इसमें ये बात है कि इज्जत दें दूसरों को, क्योंकि वलकद करमना बनी आदम, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बनी आदम को इज्जत दी है, बनी आदम को यानी पूरी बनी आदम को, आदम के बच्चों को हमने इज्जत दी है। उसमें ये नहीं है कोई के ये कोई छोटा प्रोफेशन है, ये कोई छोटा बंदा है, ये कोई वकील है, ये कम पैसों वाला। तो इससे हम ये सोचें कि जो भी हमसे स्टेटस में कम है, हमारे नौकर हैं या हमारे कोई और भी है जो हमसे माल में कुछ कम है, तो उनको बेइज्जत करने का हमें हक नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी है, किस किस को इज्जत दी है, बनी आदम को, सबको, सब आदम के बच्चों को, तो उसके अंदर सभी आ जाते हैं। तो हम फिर जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी हो हम उसको बेइज्जत करें, और हम खुद भी अपना इकराम करें, अपने आप को इज्जत दें। कैसे अपने आप को इज्जत दे सकते हैं कि गुनाहों को छोड़ दें, क्योंकि गुनाहों में पड़ना खुद को बेइज्जत कराना है। इसलिए हम गुनाहों की जिंदगी को छोड़ें, इसमें ही हमारी इज्जत है, और हमारी बेइज्जती है कि जब हम गुनाहों में पड़ जाते हैं। और फिर ये नाम दो दफ़ा कुरान करीम में आया, एक दफ़ा तो सूरह इन्फितार में आया जहाँ पे आता है या अय्युहल इंसान, बड़ी ही खूबसूरत आयत है, बहुत प्यारी, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, कुरान में दो दफ़ा ही या अय्युहल इंसान कर कह के अल्लाह ताला ने पुकारा, दो दफ़ा सिर्फ। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा सकते थे या अय्युहन नास, ए लोगो, लोगों नहीं कहा, जब क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया जाता है ना तो हर कोई सोचता है पता नहीं मुझे तो नहीं कहा जा रहा, उसको उसकी बात हो रही होगी, लेकिन जब एक इंडिविजुअल को एड्रेस किया जाए, आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब अगर मैं ऐसे पॉइंट आउट करके आपको कहूँ तो फिर आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं जब मेरी सी बात हो रही, और मैं कहूँ कि पूरी क्लास ऐसे करे, पूरी क्लास ये करे, जितने सुनने वाले हैं ये, तो फिर एक जनरल बात हो जाती। तो अल्लाह ताला ने एक एक इंसान को ये फरमाया, जैसे एक को पॉइंट आउट करके, जैसे हम कहे ना कि आप क्या बात है आपको, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुस्लिम, ए मुसलमान, बल्कि अल्लाह ताला ने ये सब को एड्रेस किया, एक एक इंसान को इंडिविजुअली एड्रेस किया, और क्या एड्रेस किया, मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, अल्लाह अकबर, ए मेरे बंदे, तुझे तेरे रब्बे करीम से, तुझे तेरे रब से किसने धोखे में डाल दिया, तेरा रब तो बड़ा करीम है, उसने तो तुझे बहुत कुछ दिया। अब आप करीम का माना अपने जहन में लेकर आए, जितने माने वो सब जहन में लेकर आए, कितना वो सखी है, कितना अता करने वाला है, जिस जो तुम्हें इतना अता करता है उससे तुम्हें धोखे में किसने डाल दिया, तुम्हें किसने दूर कर दिया, जैसे आप ये समझे कि जैसे माँ कहे ना मेरे बच्चे में, मेरे बेटे क्या कर रहे हो तुम, अल्लाह ताला उस तरह फरमा रहा है, ए मेरे बंदे, मैंने तो तुझे अपने हाथों से बनाया, तेरी नोक पलक संवारी, आगे यही बात आ रही है, अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक़ फ़अदलक, भी यही सूरत माशा और कबक, अल्लाह ने तो तारी नोक पलक संवारी, तुझे एक मुकम्मल इंसान करके दुनिया में भेजा, तू अपने रब से ही धोखे में आ गया, उसी से दूर हो गया। सोचे माँ बाप को कितना दुख होता है अगर औलाद माँ बाप को ही छोड़ के चल पड़े कहीं और, उस तरह से थोड़ा सा करके देखें, हो सकता है क्योंकि ऐसे समझ ना आए। तो अल्लाह ताला जो पुकार रहा है ना, जैसे एक माँ बच्चे को पुकारती है, माँ गर्रा का क्या हो गया, किसने तुझे मेरे बारे में शक में डाल दिया, मुझसे ही तू भाग रहा है, अल्लाह ताला उस तरह फरमाते हैं, तुझे किसने धोखे में डाल दिए, किसने मेरे बारे में बदगुमान कर दिया, इस तरह से अल्लाह ताला बात फरमा रहे। और यहाँ पे इस आयत में इतनी जबरदस्त आयत है ना ये, कि इलाह का वर्ड नहीं आया, रब का आया, इलाह का मैंने आपको बताया था ना अजमत है उसके अंदर, उसमें एक जलाल है, रब का लफ्ज है, मोहब्बत का लफ्ज है, उसमें पालने वाले का माना है, पालने वाला, दुनिया में पालने वाले किसको कहते हैं, माँ को कहा जाता है, माँ को पालने वाली कहा जाता है, अल्लाह ताला ने वो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जो पालने के लिए आता है, और इंसान को अपने पालने वाले से या पालने वाली से हमेशा बड़ी एक अटैचमेंट होती है। आप देखें ना, एक इंसान छोटे होते से लेकर बूढ़ा भी हो जाता है ना, उसको कोई जरा तकलीफ होती है, हाय अम्मी, हाय अम्मा, ऐसे मुंह से निकलता है, अब्बा क्यों नहीं कहता, अम्मा ही क्यों नहीं निकलता है मुंह से, क्योंकि एक अटैचमेंट है पालने वाली के साथ, हमेशा आप देखेंगे उसके साथ एक एक लगाव, एक कुर्बत होती है। तो रब तो सबसे ज्यादा पालने वाला है, वो फरमाता है कि वो जो हमारी एक कुर्बत है वो तुझे दूर किसने कर दिया मुझसे, अल्लाहु अकबर। माएं कैसे बच्चों के लिए तड़पती हैं ना, बेकरार होती हैं, फरमाया है मेरे बंदे तुम्हें किसने धोखा दे दिया, उस पालने वाले के बारे में तुमने धोखा खा दिया, जैसे माँ कहे बच्चे तूने अपने माँ को दुश्मन समझ लिया, तो ऐ मेरे बंदे तूने मुझे अपना मुखालिफ समझ लिया, तो ये कहता है मैं तेरे ऊपर जुल्म करूंगा, मैं तो तेरा सबसे ज्यादा हमदर्द हूं, मैं तो रब्बुल करीम हूं, रब्बिकल करीम। मां तो फिर भी तुझे डांट लेगी, मार लेगी, दुत्कार देगी, कहेगी चला जा यहां से, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, रूठ भी जाएगी। अल्लाह अकबर। और उल्टा इधर क्या है, तू ही मुझसे रूठ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दर छोड़ दिया, मेरी मस्जिद छोड़ दी, मुझे सज्दे करने छोड़ दिए। और किस लिए, किस चीज ने धोखे में डाला है, दुनिया ने, माल ने, चीजों ने, हाँ इन्होंने तुझे धोखे में डाल दिया कि तू अपने रब्बे करीम से दूर हो गया, इन्होंने तुझे रब से बेगाना कर दिया। है ना, कभी हम भी तुम भी ते आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी तो थे कि तुम्हारे रब के साथ रिश्ते थे, अब तुम इतने गुम हो गए दुनिया में कि उसी रब से दूर हो गए। कितनी बदनसीबी है ना इंसान की, ये वो उन रास्तों को ही भूल गया जिन पे कभी चलता था, जो कभी रब की तरफ जाते थे। लेकिन वही बात है कि माँ बाप नहीं भूलते, औलाद भूल जाती है ना, तो अल्लाह ने हमें अपने हाथों से बनाया, वो नहीं भूलता हमें, हम भूल जाते हैं, वो अपने दरवाजे नहीं बंद करता, हम उसकी तरफ जाने वाले रास्तों पे चलना छोड़ देते हैं। और बच्चा घर से चला जाए माँ बाप को छोड़ के, तो उसको तो शायद परवाह भी ना हो, लेकिन माँ बाप दरवाजे की तरफ ही तकते रहते हैं कि पता नहीं कब हमारा बच्चा वापस आ जाए, कब लौट आए। इसी तरह हमें उतना दर्द नहीं है, हमें उतनी फिक्र ही नहीं है लौटने की, जितना अल्लाह को इंतजार है कि ये मेरा बंदा लौट आए। और ये उसका गिला है इस आयत में, अय्युल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या कर रहे हो तुम मेरे बंदे, अगर छोड़ना था तो मुझे ही छोड़ना था, जो मैं सबसे ज्यादा तेरा हूं। अल्लाह अकबर। वो तो देखें सारा दिन हम उसी का दिया हुआ खाते हैं, उसी का दिया हुआ पहनते हैं, उसी के दिए हुए आजा से काम लेते हैं, उसी की दीवी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसी की दीवी जुबान से बोलते हैं। और फिर जाके जब रात को बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो वो ये नहीं फरमाता ये अल करीम रब कि अब मैंने तुझे नींद नहीं देनी, तूने तो सारा दिन मुझे एक सजदा भी नहीं किया, ये नहीं फरमाता, वो फिर भी तुम्हारे लिए नींद को भेज देता है कि मेरा बंदा आराम कर ले। ऐसा करीम रब भी कहीं देखोगे, सारा दिन इंसान हराम कमाता है, हराम लेके घर आता है, वो ये नहीं करता कि तुमने मेरी नाफरमानी की मैं तुम्हारे से जुबान का जायका छीन लूंगा। अल्लाह अकबर। सारा दिन इंसान उस रब की नाफरमानी करता रहता है, फिर भी वो अपनी नेमतें बखेरता ही जाता है। वो कहता तू मेरी माने या ना माने, रोटी मैं फिर भी तुझे खिलाऊंगा, तू सारा दिन में मुझे एक दफा भी ना सजदा करे, मैं फिर भी तेरे काम बनाऊंगा और तुझे सलामती दूंगा, अमन में रखूंगा। अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा करीम रब भी देखा होगा। मूसा अलैहि सलाम जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिला, कहने लगा किधर जा रहे हो, फरमाते अल्लाह से बात करने जा रहा हूं, कहता मेरा एक पैगाम ले जाना, अपने अल्लाह से कहना कि मैं नहीं तुझे मानता, मैं तेरा इनकार करता हूँ। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से चल दिए, जब अल्लाह ताला के पास पहुँचे उस बात को नहीं बताया, नहीं बयान किया। अल्लाह ताला ने पूछा मूसा वो बंदा क्या कह रहा था तुझे। अब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बताना चाहते, तो अल्लाह ताला को तो पता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला जो भी वो कह रहा था, अल्लाह ताला फरमाते नहीं बताओ वो क्या कह रहा था, हालांकि उसको इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको कह दो कि तू मुझे माने या ना माने, मैं खाना फिर भी तुझे खिलाऊंगा, मैं फिर भी तुझे सलामती दूंगा। हमें ही उस रब से मोहब्बत ना करनी आई और उसकी कदर नहीं करनी आई, वरना जितने हम अभी तक अस्माए हुस्ना देख चुके हैं उनमें क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए ख्याल ही ख्याल है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, उनके लिए करम ही करम है। कहीं कोई ऐसा नाम नहीं आपने देखा कि जिसके अंदर ऐसा कोई चीज़ों के बंदे का ख्याल ना हो, बंदे के ऊपर कोई नौजुबिल्ला कोई जुल्म हो, या नहीं, हर अल्लाह ताला के इस्म के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो बंदे के ही ख्याल की है। उसके बावजूद इंसान उस रब को ना पहचाने, जो उसको पहचान लेता ना उसको तो हर तरफ वो रब ही नजर आता है, उसको तो एक पत्ते में भी रब नजर आएगा और आसमान को देखेगा तो उसमें भी रब नजर आएगा, हर तरफ उसको वही नजर आएगा। बस वो आंख नहीं है ना हमारे पास जिस आंख से इस तरह दिखने लगे। अल्लाह से वो आंख मांगे, वो नजर मांगे कि अल्लाह तू हर तरफ तू ही मुझे नजर आए। असल अंधा वो नहीं है जो इन आंखों से महरूम है, असल अंधा वो है जिसने अपने अल्लाह को नहीं पहचाना। होना तो ये चाहिए था कि हम लोगों को भी उस रब की पहचान कराते, मगर हम तो खुद ही रास्ता भूल गए, हम तो खुद ही कहीं और निकल गए, क्या लोगों को राह दिखाएंगे। और जिसको ये याद हो कि मैं कुछ भूल गया हूं उसको तो आप याद करा सकते हैं, लेकिन जिसको याद ही ना हो कि मैं कुछ भूला हूं उसको कौन याद कराए। आज हमारा हाल ये, हमें तो ये भी याद नहीं कि हम क्या भूल गए, किसको भूल गए, किसी से उसके खानदान बरादरी या उसके बड़े बुजुर्ग को के बारे में पूछा जाए तो इतने जज्बाती हो जाते हैं, इतने जोश में बोलने लगते हैं, वो ऐसे थे वो ये था, सारे उनके एहसास जाग उठते हैं। मगर उसी इंसान के सामने उस अलवदूद का नाम लिया जाए, अलजब्बार अलहलीम अलगनी अलगफूर अलगफार अलकरीम, इन नामों को लिया जाए और उसको पता ही ना हो कि ये कौन है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा जुल्म है कि इंसान के पास इंसानों की तारीफ के लिए तो बड़े बड़े अल्फाज हैं और बड़ी बड़ी तकरीरें, लेकिन अल्लाह अर्रहमान की तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं मिलते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्योंकि उस अलकरीम के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, सारी नॉलेज जो है वो इंसानों के बारे में ही है। अगर अल्लाह ताला की इन जो बिखरी हुई निशानियां हैं कायनात में, ये साइंस हैं जो उस तक पहुंचाते, इन्हीं पे गौर कर लेते, तवज्जो कर लेते तो कोई और चीज का होश ना रहता। हमने ये सीखना है और उसके बाद हमने ये पहचान हर एक को करानी है, कोई काला है कोई गोरा है, अरबी है अजमी है काफिर है मुसलमान है, सबको पहचान कराओ ताकि सबके दिलों का रुख दुनिया की चीजों से हटके उस अल करीम की तरफ हो जाए। अल्लाह ताला इन असमा को सही सीखना समझना और इनका यकीन दिल में हमारे अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, आपका ये सब सुनने का, जो भी इसमें कोई गलती हो गई हो, जो कमी रह गई जितना मेरे बताने में, तो वो मेरी तरफ से कमी है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे इस पे। और जिन नामों से आपको मोहब्बत हो गई वो अल्लाह ही की तरफ से उसका फ़जल है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।